जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। पिछले दो दिनों से गौर लीला का वर्णन हो रहा है। प्रसंग ये चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं और जो निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता का श्राद्ध करने हेतु गया धाम में गए। वहां पर गदाधर विष्णु के चरण कमलों का दर्शन करके और वहां के ब्राह्मणों के विष्णु के चरण कमलों के गुणगान को सुनकर पहली बार उन्होंने तीव्र भक्ति भावना प्रकट की। फिर ईश्वरपुरी से पुनः मुलाकात हुई। ईश्वरपुरी के संग में आकर उन्होंने फिर से भाव प्रकट किए, उनकी प्रशंसा की, उनका गुणगान किया। आगे चल के वो अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए और वहां पर उन्होंने फिर श्राद्ध किए। वापस लौट आया गया, वहां पर ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने दीक्षा मंत्र के ऊपर ध्यान करते करते वो विरह के लक्षण प्रकट करने लगे। जिस तरह से गोपियां वृंदावन में कृष्ण के विरह में तड़पती थी और कृष्ण को पुकारती थी, हमेशा कृष्ण का स्मरण करती थी, ठीक उसी तरह के लक्षण निमाय पंडित में प्रकट होने लगे। और एक बार वो बीच रात में ही मथुरा की ओर निकल पड़े। भगवान कृष्ण की खोज में भाव विभोर हो गए थे। उस समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवतागण बोल रहे थे कि हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, ये आपका मथुरा जाने का सही समय नहीं है। आप यहां अवतीर्ण हुए हैं हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को फैलाने के लिए। यहां आपका काम अभी तक बाकी है और अभी अगर आप मथुरा चले जाओगे तो यह संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन कैसे होगा, इस कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए अब वापस नवद्वीप लौटकर चले जाइए। तो निमाय पंडित शांत हो गए और वापस अपने शिष्यों के साथ में नवद्वीप लौटकर आए। तो आज से हम ये चर्चा करेंगे कि नवद्वीप में लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वहां नवद्वीप में क्या हो रहा था। हमें याद रखना है कि निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ये स्वयं श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे एक अद्भुत रूप में जो कि आज तक भौतिक जगत में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक वस्तु प्रकट करने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत की जो पहले किसी भी अवतार ने प्रकट नहीं की थी। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। तो वो ऐसे, वो स्वयं श्री हरि हैं पिघले हुए सोने का वर्ण धारण करके आए हैं और एक ऐसा रस, उन्नत उज्ज्वल रस सारे जीवों को प्रदान कर रहे हैं जो किसी भी अवतार ने पहले नहीं दिया, और वो है वृंदावन के गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, और वो भी विरह की भावना में। तो ये अवतार इतना विशेष इसलिए है, और ये भगवान श्री कृष्ण खुद हमें सिखाने आए हैं कि उन्नत भक्ति हमें कैसे करनी है मधुर्य रस में। तो ये जो निमाय पंडित की लीलाएं अभी चल रही हैं, ये इसलिए हमारे लिए बहुत अनुसरणीय हैं, सुनने योग्य हैं, सीखने योग्य हैं। हालांकि हम नकल नहीं कर सकते हैं और नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु हम समझ सकते हैं कि वास्तव में सच्चा कृष्ण प्रेम ये क्या होता है। ये कोई सस्ती चीज नहीं होती है, और इसलिए जब हम निमाय पंडित की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमें स्वयं कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जब निमाय पंडित लौटकर चले आए अपने शिष्यों के संग में, तो बहुत ही जल्दी सब जगह खबर पहुंच गई कि निमाय पंडित गया से लौटकर आए हैं। हर्ष उल्लास का वातावरण सारे नवद्वीप धाम में था। सभी लोग इधर उधर से भाग के आए उस मार्ग पे जहां से निमाय वापस आ रहे थे, और जैसे ही वो लौटकर आए तो उनके सारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सब उनके सामने आए। अरे निमाय लौट के आए, वहां पे क्या किया? और वो सब उनके सामने सामने चलते उनको जगन्नाथ मिश्र के घर में वापस ले गए, और जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने आके निमाय को आशीर्वाद दिया और निमाय ने स्वीकार किया। जैसे जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका आ रहे थे तो उनसे जो वरिष्ठ थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। हालांकि वो जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक मनुष्य समाज में लीला कर रहे थे तो मनुष्य समाज में जो रीत रिवाज है, जो प्रथा है, उसका पालन करना उनको अनिवार्य था। इसलिए भीष्म, द्रोण इत्यादि इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। यहां तक युधिष्ठिर महाराज ने भी आशीर्वाद दिया क्योंकि वो बड़े भाई थे। अर्जुन जैसे हम उम्र के जो थे उन्होंने आलिंगन किया, और फिर नकुल, सहदेव जैसे उनसे कम उम्र वाले थे उन्होंने कृष्ण के पैर छुए, चरण छुए, क्योंकि ये प्रथा थी। तो उसी तरह से निमाय पंडित से उम्र में जो ज्यादा थे उन्होंने उनके सर को स्पर्श किया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, बहुत अच्छा हुआ अभी ठीक ठाक आ गए वापस। और दूसरों थे जो उन्होंने निमाय पंडित के शरीर पे अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके कवच बनाए उनके संरक्षण के लिए, निमाय पंडित ने स्वीकार किए। भगवान का संरक्षण करने के भला मंत्र बोलने की क्या आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि निमाय मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उन्होंने ये मंत्र भी स्वीकार किए। मंत्र तो क्या, उन्होंने उन लोगों का प्रेम स्वीकार किया, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, लोगों का भाव स्वीकार करते हैं, न केवल बाहरी कार्य। और इस प्रकार से बड़े नम्रता से निमाय पंडित ने वर्णन करना आरंभ किया कि गया में उनका क्या अनुभव हुआ। वो कहने लगे बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से, कि केवल आप सबके आशीर्वाद से ही हमें यह सौभाग्य मिला कि हम गया धाम जा सके। वैसे चैतन्य महाप्रभु के इस नम्र रूप को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा प्रेम की भावना उनके हृदय में आई, क्योंकि आज तक जो निमाय पंडित ने स्वरूप धारण किया था नवद्वीप में वो एक बहुत ही घमंडी विद्वान का था, जो हर जगह जाकर दूसरे विद्वानों को वाद विवाद में हराता था। और आज यही निमाय पंडित इतने नम्र स्वरूप धारण करके सबके सामने पेश आए थे, सभी लोगों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। और इस प्रकार से निमाय पंडित ने फिर सब के जो शुभकामनाएं हैं वो स्वीकार किए, और फिर थोड़े से अपने जो निकट के शिष्य थे उनको लेकर वो कमरे में अंदर गए और ज्यादा विस्तार में अपने गया यात्रा का वर्णन करने लगे। ये स्वाभाविक है, जैसे कोई भक्त जैसे वृंदावन जाते हैं तो फिर आके अपने दूसरे भक्तों को वर्णन करते हैं, हम यहां पर गए थे, वहां पर गए थे, यहां अनुभव हुआ। तो निमाय पंडित भी वर्णन करने लगे, कहने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जब मैं गया में प्रवेश करने लगा तो वहां पर कीर्तन होने लगे, मैं ब्राह्मणों का कीर्तन सुनते लगा और वहां शंख बजने लगे और नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे वहां के ब्राह्मण। और जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि विष्णु के चरण कमल वहां पर हैं, विष्णु के चरण कमलों का दर्शन हुआ और वो ब्राह्मण विष्णु के चरण कमल का गुणगान कर रहे थे कि भगवान ने बड़ी कृपा करके उनके पद चिन्हों को यहां स्थापित किया है, गया को धाम बनाया है भगवान विष्णु ने और यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे, यहां पे उन्होंने चरणों को धोया था और जैसे चरण धोए तो ये स्थान और भी पावन बन गया है और इस जल को स्वीकार करके गंगा जी गंगा माता अपने आप को धन्य समझने लगी और शिव जी इस जल को अपने सर के ऊपर स्वीकार करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो पानी है, ये जल है, कोई साधारण नहीं है। इस जल ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोया है और यही स्थान इसलिए पाद पद्म तीर्थ कहलाता है, क्योंकि इस धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोया हुआ जल यहां पर आता है। तो जब निमाय पंडित ने पाद पद्म तीर्थ ये उच्चारण किया और आगे वर्णन करने लगे तो तुरंत उनके शरीर में भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे, आंखों पे आंसू आने लगे और रोंगटे खड़े हो गए और कंठ गदगद हो गया और इस प्रकार से बेहोश होकर वो गिर पड़े। ये पहली बार नवद्वीप में निमाय पंडित ने ये लक्षण प्रकट किए और जो भी वहां विद्यार्थी या ब्राह्मण उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये सब लक्षण देखे और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उधर खबर फैलने लगी धीरे धीरे से कि निमाय पंडित अभी वैष्णव बने हैं। निमाय पंडित के आंसुओं को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतने आंसू बहाने लगे कि एक फूलों के बगीचे को पानी देने के लिए जितना काफी जो पानी था उतना बहने लगा। वहां पे श्रीमान पंडित नाम के एक भक्त थे और उनके वो भी शिष्य भी थे, उन्होंने देखा और अन्य सारे जो वैष्णव वहां उपस्थित थे वो चैतन्य महाप्रभु के इन लक्षणों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, आज तक इन्होंने ऐसे लक्षण कभी भी देखे नहीं थे और उनको तुरंत पता चला कि जो अभी घटना हो रही है उनकी आंखों के सामने ये कोई साधारण घटना नहीं है, कोई अद्भुत लीला यहां पर हो रही है। उस समय उनको मालूम नहीं था कि निमाय पंडित स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इस प्रकार से निमाय फिर अपने समाधि से बाहर आए और कहने लगे ठीक है, अभी जो मैंने भक्ति के लक्षण प्रकट किए उसको जरा उसके बारे में सोची नहीं, लेकिन कल सुबह आप शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में आइए और मेरे हृदय की जो वेदना है मैं आपको उस समय सुनाऊंगा और सदाशिव पंडित और मुरारी इनको भी आप साथ में लेकर आना, तब मैं बात करूंगा कि मेरे हृदय की क्या बात है, गया जाकर मुझे क्या प्राप्त हुआ। तो सब लोग अपने अपने जगह चले गए। उधर नवद्वीप के जो छोटी वैष्णव समाज थी, थोड़े बहुत भक्त थे, ज्यादा नहीं थे, ज्यादातर लोग वहां के नास्तिक थे, कर्मकांडी थे, ज्ञानी थे, योगी थे, भक्त तो बहुत कम थे, फिर भी थोड़े बहुत जो भी भक्त थे वो रोज नवद्वीप में मिलते थे और कृष्ण कथा करते थे। तो श्रीनिवास नाम के भक्त के घर में एक वृक्ष था जिसमें बहुत खूबसूरत सुगंधित फूल आया करते थे, और ये वृक्ष एक कल्पतरु के समान था। जितने भी फूल निकाले उतने नए नए फूल आते थे उसमें, सुंदर फूल। तो हर रोज प्रातः काल वैष्णव वहां पर एकत्र होते थे वहां के फूल निकालने के लिए, क्योंकि वो सब अपने अपने घर में जाकर वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहते थे। आजकल भी हम देखते हैं भारत में, अगर आप किसी के घर में जाकर बगीचे में जाकर फूल निकालेंगे और बताएंगे कि भगवान की पूजा के लिए है, कोई ना नहीं कहेगा। मतलब ये संस्कृति अभी तक है। और जब भी वो फूल निकालते थे तो कृष्ण कथा करते थे, केवल कृष्ण के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते थे। तो ये सब वैष्णव हमें सिखला रहे हैं कि जब हम कृष्ण के लिए कोई सेवा कर रहे हैं या दूसरे समय भी, हमें कैसे कृष्ण के बारे में ही बोलना चाहिए। जैसे हम जब माला बनाते हैं, भगवान के लिए हम माला बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, हम रसोई कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो भगवान के लिए, तो उस समय हमें केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, दूसरों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल कृष्ण कथा होना चाहिए। तो उस समय उन भक्तों के बीच में श्रीमान पंडित आए, बड़े खुश दिखाई पड़ रहे थे। तो दूसरे भक्तों ने पूछा कि भाई इतने खुश क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? श्रीमान पंडित कहने लगे, ऐसी कोई विशेष बात है जिससे मैं आज बहुत खुश हूं। अरे बताओ तो सही, क्या बात है, इतनी क्या खुशखबरी है? तो श्रीमान पंडित बोलने लगे, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो बड़े ख्याल से, निमाय पंडित वैष्णव बन गया है, विश्वास करोगे? हाँ, वास्तव में ये भक्तों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वो वैष्णव जो थे हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान से कि निमाय जितना बुद्धिमान व्यक्ति, निमाय जितना प्रभावशाली व्यक्ति अगर वैष्णव बन जाए तो सारे नवद्वीप को, तो क्या सारे विश्व भर को वो वैष्णव बना सकेगा। इतनी इसकी तेज बुद्धि, इतना शास्त्रों का ज्ञान, वाद विवाद में इतना निपुण, ऐसा व्यक्ति निमाय जैसा हमने कभी तक नहीं देखा है। और निमाय के प्रति न जाने क्यों हम इतने आकर्षित हो रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि स्वयं भगवान है, इसलिए उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर से आकर्षण होता है भगवान के प्रति, चाहे हम वो भगवान हैं वो जाने या न जाने। इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रति न केवल मनुष्य आकर्षित होते थे, बल्कि जो पशु पक्षी थे वो भी आकर्षित होते थे। गाय, हिरण और जो भी प्राणी थे वहां पर, वो सब आकर्षित होते थे कृष्ण के प्रति। उनको तो कोई ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, एक स्वाभाविक तौर से आकर्षण होता था। और यहां तक कि वहां के जो वृक्ष थे वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होते थे। जब भी कृष्ण गुजरते थे तो उनकी जो शाखाएं हैं वो झुक जाती थी, मानो कि वो उनको दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और जो हिरणें होती थी वो जाके चाटती थी, गाय भी जाकर उनके चरणों को चाटते थे। इस प्रकार से पशु पक्षी, यहां तक कि जो मधुमक्खी हुआ करते थे, भंवरे, वो भी जाकर गोल गोल घूमते थे, इतना आकर्षित होते थे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति। तो कोई जाने या न जाने, जब कृष्ण सामने आते हैं तुरंत वो आकर्षित हो जाते हैं। यही है कृष्ण शब्द का तात्पर्य। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाला। जब हमारे संस्था के भक्त विदेशों में भी गीता, भागवत इत्यादि इन ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं, तो उन लोगों को वहां पर, वो प्रजा को कृष्ण के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, गीता भागवत क्या है, कुछ मालूम नहीं चलता। लेकिन फिर भी वो जब उनको कृष्ण की तस्वीर दिखाते हैं पुस्तक में, इतना सुंदर लगता है कि तुरंत वो आकर्षित हो जाते हैं। और जो लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, कृष्ण के पिक्चर को देखकर, तस्वीर को देखकर तुरंत किताब को हटा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। इससे पता चल सकता है, एक भक्त बताते थे कि जब हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हम जब अलग अलग लोगों को जाके बोलते हैं कि आप एक किताब लीजिए, कभी कभी वो लोग हैं ज्यादा हमारा समय बर्बाद करते हैं। कोई लोग केवल बातचीत करते हैं, फिर किताब भी नहीं लेते हैं। कोई लोगों को स्वाभाविक आकर्षण होता है, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना है। इसलिए हम ये निर्णय लेने के लिए कि इसके साथ हमें समय गंवाना चाहिए कि नहीं, ये निर्णय लेने के लिए हमको सबसे पहले उनको कृष्ण का तस्वीर दिखाते हैं। अगर उसे थोड़े बहुत आंखों में आकर्षण भी हुआ कि अरे इतना सुंदर है, भले शब्दों से भी उसने नहीं कहा, लेकिन आंखों से ये अगर प्रकट हो जाए कि वो आकर्षित हो रहा है, तो फिर वो उस व्यक्ति के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं। अगर उसके आंखों से ऐसा पता चलता है या शरीर से कि कृष्ण को देखकर उसे एक प्रकार की घृणा हो रही है, तो फिर उस व्यक्ति से वो अलग दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से निमाय पंडित कृष्ण है ये कोई नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आकर्षण न जाने क्यों वैष्णव को हो रहा था निमाय पंडित के प्रति। इसलिए वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि निमाय अगर वैष्णव बने तो कितनी अच्छी बात होगी। और वैसे निमाय पंडित जानबूझकर अपनी लीला कितनी अद्भुत तरह से करते हैं भगवान, कि वो खास करके वैष्णवों को ज्यादा छेड़ते थे, पकड़ पकड़ के वैष्णवों के साथ में तर्क करते थे, वैष्णव भाग के चले जाते थे, निमाय उनके पीछे भागकर उनको पकड़ के कहते थे आओ तर्क करो, कहां भागते हो। और फिर जब वैष्णव दूर भागते रहते तो निमाय पंडित अपने मित्रों को अपने शिष्यों को बोलते कि वैष्णव जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तर्क वितर्क में वो रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन देखो मैं ऐसे वैष्णव होके दिखाऊंगा इनको, ये सब याद रखेंगे, सब मेरे संग के लिए तरसेंगे ये लोग, क्योंकि वो तो जानते हैं निमाय पंडित स्वयं भगवान, भविष्य में क्या होने वाला है, उनका उद्देश्य क्या है, सब जानते हैं। तो इस प्रकार से जब वैष्णव ने सुना कि निमाय पंडित वैष्णव बन गया है, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो श्रीमान पंडित ने कहा हाँ हाँ, हम जब गए थे हमने सुना कि गया से निमाय पंडित लौट के आया है, तो हम सुनने गए निमाय से कि गया का अनुभव कैसे हुआ। और जब निमाय पंडित पाद पद्म तीर्थ ये शब्द का उच्चारण कर रहा था और ये बता रहा था कि गया में कैसे भगवान ने अपने चरण कमलों को स्थापित किया और कैसे श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों का जल वहां पर छोड़ा है, तो उस समय उनकी आंखों से जो है आंसू बहने लगे। हमें ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे गंगा जी बह रही है, और उधर हम सब आश्चर्यचकित हो गए, हमारे आंखों से भी आंसू बहने लगे, और ऐसे आंसू बहने लगे मानो कि गंगा जी का कोई नया उगम स्थान हो गया हो, इतने सारे गंगा जी बहने लगे। और ये सारे लक्षण प्रकट हुए और हमें लगता है कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आज तक हमने निमाय पंडित को पहचाना नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीमान पंडित वर्णन करने लगे और सारे वैष्णव वहां फूल तोड़ने को छोड़कर सब सुनते बैठ गए। और श्रीमान पंडित कहने लगे कि निमाय कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां, मुझे कृष्ण छोड़ के चले गए। ऐसे तीव्र विरह में वो तड़प रहे थे, कभी बेहोश होकर गिर पड़ते, फिर उनको होश आ जाता। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं मेरे हृदय की वेदना मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी के घर में कल सुबह आना और सदाशिव और मुरारी को साथ में लेकर आना। तो अभी मैं वहां चल रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं सुनने के लिए कि निमाय के हृदय में क्या वेदना है। तो उस समय सारे जो वैष्णव थे वहां पर बड़े जोरदार कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है कि निमाय वैष्णव बन गया है। वास्तव में वैष्णवों का सुख इसी में होता है, वैष्णवों के संग में। और सबसे ज्यादा सुख वैष्णवों को तब होता है जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग वैष्णव बन गए हैं। ये आनंद जो है कि दूसरे अभक्त अभी कृष्ण के भक्त बन गए हैं, इस बात से इतना आनंद आता है भक्तों को कि सारे दुनिया के संकट को वो भूल जाते हैं। तापत्रय ये जो तीन प्रकार के कष्ट है संसार में, उनको भूल जाते हैं। इसलिए वैष्णवों को चाहिए, भक्तों के चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में शामिल हों और दूसरों को प्रचार करें, कृष्ण के बारे में बोलें, भले वो कुछ जाने या न जाने, प्रभुपाद बताया करते थे कि उनके शिष्य की एक बच्ची लड़की थी, छोटी थी, 5 साल की, जिसका नाम था सरस्वती। जब भी प्रभुपाद कथा करते थे तो वो बच्ची जाकर हर एक व्यक्ति को जाके कंधे पे हाथ रख के बोलती थी, आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि देखो ये प्रचार कर रही है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है ज्यादा, लेकिन इतना ज्ञान काफी है कि कृष्ण भगवान है। ये ज्ञान जो है सारे शास्त्रों का सार है, ये जान गई है, इसको और जानने से क्या मतलब, ये भी प्रचार कर रही है। तो इस प्रकार से हमें गीता भागवत का ज्यादा ज्ञान हो या कम ज्ञान हो, हमें श्लोक याद हो या न हो, हम विद्वान हो न हो, हमें खुद कृष्ण भक्ति का आचरण करना चाहिए और दूसरों को इसका प्रचार करना चाहिए। जितना कुछ हमें मालूम है हमें करना चाहिए। आप में से कौन ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम? है कोई व्यक्ति ऐसे? इतना तो हम बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के शरण में जाओ। हरे कृष्ण महामंत्र तो हम सब जानते हैं, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कह सकते हैं। और जो भी कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभुपाद की किताब में, उनको हम दोहरा सकते हैं। और जब हम ऐसे करेंगे और अगर हृदय से हम सिंसियर रहे, आचरण भी हमारा रहा, तो हमारा प्रचार में शक्ति आएगी। कृष्ण शक्ति बिना नहीं प्रवर्तन। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि जब तक कृष्ण शक्ति हमारे अंदर नहीं आती, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे प्रचार में कोई परिवर्तन के लिए कोई शक्ति नहीं होगी। लेकिन जब लोग भक्त बनते हैं हमारे दो शब्द कहने से, तो हमें जो आनंद मिलता है उस आनंद से हम सारे दुख भूल जाते हैं। हमारे घर में कितना दुख है, हमारे किसके साथ क्या झगड़ा है, हमारे व्यवसाय में कितने परेशानी है, किसने हमारा अपमान किया, मंदिर में आके भी किस भक्त ने हमारे साथ कैसे बोला नहीं बोला, सब भूल जाते हैं। सही बात है, आपको अनुभव है? जब आप किसी को कृष्ण के बारे में बोलते हैं और वो व्यक्ति कुछ रुचि दिखाता है और आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है उसे कृष्ण के बारे में बताने के लिए, और आखिर वो भक्त बनता है, मंदिर में आता है, तो कितना आनंद होता है आपको, अपने कष्ट भूल जाते हैं। तो ये है आचार और प्रचार। आचार के लिए चाहिए विचार, मतलब पहले सत्संग में आकर अपने विचारों को हमें ठीक करना चाहिए, भक्ति मार्ग में ले आने चाहिए। जब विचार ठीक हो जाएंगे आचार ठीक होगा, आचरण जब ठीक होगा तब प्रचार भी सही तरह से हो पाएगा। तो इस प्रकार से जब इन वैष्णवों ने देखा कि निमय जैसा एक शुष्क तर्क करने वाला आदमी, सूखा व्याकरण में रुचि रहने वाला आदमी आज वैष्णव बन गया है, तो इतने खुश थे कि कोई उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। तो फिर वो जोर से कीर्तन करने लगे, कृष्ण का नाम का उच्चारण करने लगे, कूद के ऊपर उछाल के करने लगे। और फिर जो वैष्णव थे वो सब अपने अपने घर में चले गए। केवल शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में श्रीमान पंडित गए, वहां पर गदाधर पंडित भी उपस्थित थे, ये भी बचपन से कृष्ण के भक्त थे। लेकिन उन्होंने सोचा मैं जाके देखता हूं निमय पंडित क्या बोलते हैं। तो वो भी चुपके से शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में गए और अपने आप को छुपा लिया वहां पर कमरे के अंदर, ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो वहां पर उपस्थित हैं। और उस समय जब शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में सारे भक्त उपस्थित हुए, गोपीनाथ, मुरारी, सदाशिव, शुक्लंबर इत्यादि, उस समय निमाय पंडित वहां पर अंदर आए। और जैसे ही आए, श्रीमद भागवत के श्लोकों का उच्चारण करके आए जो कृष्ण का वर्णन करते हैं। और जैसे ही उन्होंने श्लोकों का वर्णन किया, वैसे वैसे तुरंत नीचे गिर पड़े। कहां है कृष्ण, कहां मुझे कृष्ण छोड़ के चले गए, अभी अभी मैंने कृष्ण को पाया था, वो कहां चले गए, क्या आपने कृष्ण को देखा है, सब भक्तों को पूछने लगे। और फिर बेहोश हो पड़े, फिर से होश में आते। और इस प्रकार से निमय पंडित के भक्ति को देखकर दूसरे जो भक्त थे वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो भी बेहोश हो पड़े। फिर भी वो होश में आते, फिर बेहोश हो पड़ते। बीच बीच में अचानक एकदम बिल्कुल ऊंचे आवाज में वो कृष्ण का कीर्तन करते और कभी अचानक बेहोश पड़ जाते। ये जो घटनाएं चल रही थी अभक्तों के लिए समझना बहुत कठिन है, भक्तों के लिए समझना भी कठिन है कि ऐसी तीव्र भावना कहां से आती है। जो भावना चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए वो और कोई भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको याद है कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण है लेकिन किनके भाव को ग्रहण करके आए हैं? श्रीमती राधा रानी के, और इसको महाभाव कहते हैं। भाव कोई शुद्ध भक्त जो जीव है वो भी प्रकट कर सकता है, लेकिन महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी के लिए है, और ये भाव केवल चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर सकते थे। इस प्रकार से भक्ति के आनंद के सागर में सारे भक्त वहां पर डूब रहे थे। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय की बात बताई कि कृष्ण के न होने से मुझे हृदय में कितनी वेदना हो रही है। इस प्रकार से ये दृश्य को देखकर गंगा जी भी आश्चर्यचकित हो गई। वहां पर गंगा जी भी देख रही थी कि क्या अद्भुत दृश्य चल रहा है। उधर निमाय पंडित ने भक्तों से पूछा, क्या और कोई यहां पर कमरे में है? तो उन्होंने कहा, हाँ, आपका प्रिय गदाधर पंडित यहां पर है। तो गदाधर बाहर आए, गदाधर के आंखों से भी मूसलधार अश्रु बह रहे थे आंखों से, और इसको देखकर निमाय पंडित ने जोर से आलिंगन किया गदाधर का। कहने लगा कि अरे गदाधर, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम बचपन से ही इतने बड़े कृष्ण भक्त थे और हो, और तुम्हारी भक्ति की क्या कहने। लेकिन मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तो केवल तर्क करने वाला व्याकरण का शिक्षक था, और मुझे भक्ति के बारे में क्या मालूम। इस प्रकार से वहां पर भक्तों के बीच में संवाद होने लगा। भक्ति का वातावरण इतना तीव्र था कि खैर निमाय पंडित सब वैष्णवों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे ये कष्ट से आप किसी न किसी तरह से आप राहत दे दो, किसी न किसी तरह से कृष्ण मेरे पास ले आओ। तो वैष्णव आश्चर्यचकित हो गए ये भाव को देखकर। जब शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर से सब लौटकर चले गए तो सारे वैष्णवों की सभा में सारे वैष्णव विश्लेषण करने लगे इस बात का कि क्या हुआ है निमाय पंडित को, ये कैसे परिवर्तन हुआ। कोई कहने लगा है शायद संतों के संग में आ गए, शायद ईश्वरपुरी वगैरह का दर्शन किया, उनका संग किया, इसलिए शायद ये परिवर्तन हुआ होगा। कोई कह रहे थे शायद पिछले जन्म में भक्ति की होगी, बहुत अभी प्रकट किया है। कोई कहने लगे शायद भगवान नारायण उनके शरीर में प्रकट प्रवेश कर लिए हैं। और फिर आगे ये चर्चा चलने लगी कि निमाय पंडित यहां नवद्वीप में क्या क्या करने वाले हैं। कोई कहने लगे ये अद्भुत कृष्ण लीला का प्रदर्शन करेंगे। किसी और भक्त ने कहा, हाँ अब ये सारे नास्तिक लोगों का सर फोड़ डालेंगे। अच्छा है, अभी सब नवद्वीप इतने सारे नास्तिक हमको तंग कर रहे थे, आज निमाय पंडित आकर उनको सब अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच में चर्चा चलती गई। कोई समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, निमाय में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है। उधर सची देवी भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे को हो क्या गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पास है ना, बस अच्छा है। फिर वो गोविंद से जाके प्रार्थना करती कि हे गोविंद, कृपया मेरे बच्चे की आप सुरक्षा देख लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहा है, अभी क्या इतने सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मुझे तो मेरे समझ के बाहर है, लेकिन आपके समझ में सब कुछ है, तो आप इसको रखिए, आप ठीक ठाक रखिए। तो सची माता भी इस तरह से प्रार्थना करने लगी भगवान से। तो उधर अभी चैतन्य महाप्रभु तो अध्यापक थे, उनकी पाठशाला थी, उनके विद्यार्थी थे, और पुनः उनको अपने शिक्षण का काम आरंभ करना था। तो उनके शिक्षक गंगादास पंडित के पास में वो गए कि जो निमाय पंडित सिखाते थे वो गंगादास पंडित के टोल में या पाठशाला में सिखाते थे। गंगादास पंडित निमाय पंडित के अध्यापक थे। तो गंगादास पंडित के सामने आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। गंगादास पंडित ने आलिंगन किया निमाय पंडित को। बहुत खुशी हुई गंगादास पंडित को निमाय को देखकर, और कहने लगे कि अरे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम गया वगैरह जाकर तुमने सारे श्राद्ध वगैरह किए हैं, और आज तुम्हारे इतने सारे पितर वगैरह सब मुक्त हो गए, और तुम्हारे माता पिता भी कितने भाग्यशाली हैं कि तुम जैसा पुत्र तुम्हें मिला है। अब चलो बहुत दिन हो गए, अब फिर से तुम्हारे शिष्यों को पढ़ाना शुरू कर दो। अब तुम्हारे बिना इन शिष्यों को पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था। अगर स्वयं बलराम जी भी आते और उनको बोलते कि पढ़ाई करो, वो इनकार कर देते। ये शिष्य तुमसे इतने आ सकते हैं, इसलिए फिर से आ जाओ, कल सुबह से अभी तुम्हारी पढ़ाई कराना आरंभ कर लो। तो निमाय पंडित ने कहा ठीक है। अब निमाय पंडित जब अगले दिन गए गंगा जी में स्नान करके, तो वहां सारे जो शिष्य हैं वो बैठे हुए थे, और शिष्यों ने भी ये देखा था कि जगह जगह जहां भी निमाय पंडित जाते हैं, जैसे कि मुकुंद संजय के घर में गए थे और अलग अलग ब्राह्मणों के घर में गए थे, वहां वो ऐसे ऐसे लक्षण प्रकट कर रहे हैं, शिष्यों को भी समझ में नहीं आया। और एक बार वो ऐसे भक्त घर में गए थे मुकुंद संजय, वहां पर जब ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे तो सची माता को भी खबर पहुंच गई, और निमाय पंडित वापस घर में लौट के आ गए। घर में आकर उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लिए, तुलसी को जल अर्पण किया और फिर प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। मतलब हमें घर में आने के बाद क्या क्या करना चाहिए वो निमाय पंडित अपने जीवन से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर में आए चप्पल पहन के गए, बूट पहन के गए, नहीं, सब बाहर रख के हम सीधे अंदर आए, फिर हमारे पैर धोने चाहिए, स्वच्छ हो जाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, और फिर तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए, फिर हमारे भोजन के लिए प्रसाद के लिए हमें बैठना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु जब वापस लौट कर आए तो भागवत का श्लोक बोलते और भाव विभोर हो जाते, और ये सब फिर से अष्ट सात्विक विकार ये लक्षण प्रकट होते हुए देखकर सची माता तो बहुत घबरा जाती। फिर वो प्रार्थना करते कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपने मंदिर में जाकर गोपाल जी से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरे पति तो गुजर गए, मैंने पति को खो दिया, मेरा जो बड़ा लड़का था विश्वरूप उसने संन्यास लिया, उसको भी मैंने खो दिया, अभी इस लड़के को क्या हो रहा है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे ऐसे सब भक्ति का लक्षण प्रकट कर रहा है, कभी ऊपर कूदता है, कभी गिर जाता है, उसे कहीं लगे, उसे कुछ चोट पहुंचे, न जाने क्या हो रहा है, आप इसका संरक्षण कीजिए। तो इसको शांत करने के लिए कभी कभी सची माता क्या करती कि निमाय पंडित की पत्नी विष्णुप्रिया को सामने आके रख देती, लेकिन देखते हुए भी वो नहीं देखते। विष्णुप्रिया उनके सामने बैठी होती लेकिन वो उनके बीच से देखकर जैसे नजर उनके बीच से जा रही है, जैसे उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि अपने ही दुनिया में रहते। और कभी अचानक भावबोर होकर जोर से कृष्ण के नाम से गरजने लगते, और ये गर्जना सुनकर विष्णुप्रिया इतनी डर जाती कि वहां से भाग जाती उस कमरे से, और सची माता भी पीछे छुपकर वहां से देखती, ये कृष्ण कृष्ण कहां है कृष्ण, जोर जोर से बोलने लगते, फिर अचानक गिर पड़ते, फिर रोने लगते। तो इस प्रकार से घर में समय बीतता गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार की भावना वो व्यक्त कर रहे थे, और क्योंकि ऐसे भाव में थे 24 घंटे ये भावना चलती थी, रात को नींद नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने उस चंचलता में, मानसिक चंचलता में जहां वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, उनको नींद नहीं आती, लेट जाते फिर उठ जाते, कहां है कृष्ण कहां है कृष्ण, 24 घंटे यही चलता। फिर दिन हो जाता, सुबह को गंगा जी में स्नान करते, फिर जैसे गंगादास पंडित ने उनको आदेश दिया था, तो वो अपने पाठशाला में लौटकर आए और अपने शिष्यों को फिर से उपदेश करना उन्होंने आरंभ किया। लेकिन जब उपदेश करने लगे तो पहले के निमाय पंडित जैसे नहीं बोलते थे। पहले के निमाय पंडित क्या करते थे, व्याकरण को या हर एक शब्द को तोड़ के इसका ये दृष्टि से बोलना, वो दृष्टि से जोड़ना, संधि कैसे है, क्या है, व्याकरण के ऊपर टीका करते। लेकिन इस बार वो क्या करने लगे, हर चीज को कृष्ण के संबंध में ही बोलने लगे, हर बात में कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के चरण कमल इत्यादि। तो ये जब विद्यार्थियों ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे अध्यापक तो कभी पहले ऐसे नहीं सिखाते थे, ये कृष्ण कृष्ण क्या हो गया, व्याकरण छोड़कर सब कृष्ण ही हो रहा है। और पाठ शुरू करने के पहले वो हमेशा हरि का नाम लेकर शुरू करते थे। ये एक पहले से उनकी एक प्रथा थी, लेकिन इस बार जब उन्होंने ऐसे शुरुआत की, हरि का नाम लेकर उन्होंने पढ़ाई शुरू करना चाहा और पुस्तक वगैरह खोल के रखे, निमाय पंडित ने भी अपने पुस्तक खोला, जो हरि का नाम सुना तो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर पड़े निमाय पंडित, और फिर भी कहां है कृष्ण शुरू हो गए, और फिर उस भाव में अपना शिक्षण उन्होंने आरंभ किया। लेकिन क्या था शिक्षण? शिक्षण केवल कृष्ण के बारे में था। एक लंबा सा प्रवचन देना आरंभ किया और वो कहने लगे कि देखो, तुम इतने सारे पाठ सीखते हो, लेकिन सारे पाठों का सार क्या है? पाठों का सार है कृष्ण। हमें जानना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र सार है सारे शास्त्रों के। जितने भी सारे टीकाएं हैं, सूत्र हैं, व्याख्यान हैं, इनका निष्कर्ष क्या है? श्री कृष्ण। जितने भी सारे और सत्य हैं सारे जगत में, उस सत्य का सार है हरिनाम। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लो, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र सत्य है। कृष्ण ही सारे सृष्टि के संहार करने वाले हैं, सृष्टि की का सृजन करने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े जो देवता हैं, वो भी ये कृष्ण के सेवक हैं। अगर कोई चीज सत्य है ये संसार में, तो वो केवल कृष्ण और कृष्ण के चरण कमल और कृष्ण का नाम। और जो लोग कृष्ण का शरण नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े विद्वान भी क्यों ना हो, वास्तव में हमें जानना चाहिए कि वो तो बिल्कुल माया में पड़े हुए हैं, उनका ज्ञान बिल्कुल शून्य है। जो भी वेदांत है, उपनिषद है, इन सब का सार केवल कृष्ण भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति इन शास्त्रों को पढ़ता है और इन शास्त्रों को जानता है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो इसका जीवन व्यर्थ जाता है। इसका मतलब है कि वो एक धोबी के गधे के बराबर है, जो भारी भारी शास्त्रों को अपने पीठ पर लेकर जा रहा है, लेकिन इन शास्त्रों का सार जो है वो नहीं समझता है। और आगे बताने लगे कि वास्तव में ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान के उत्सवों में शामिल होते हैं। सारे ब्रह्मांड भर में भी कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण उत्सव जब होता है, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, महरलोक, जनलोक के निवासी सब ऐसे उत्सव में जाना पसंद करते हैं। लेकिन केवल जो बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे उत्सवों में रुचि नहीं लेते हैं, वो अपने खाने पीने के उत्सव में रहते हैं। ये लोग इतने मूर्ख हैं कि नहीं जानते कि इतना अमृत का पान करने का उनको अवसर मिल रहा है, पर अभी इसको भी वो नकार रहे हैं। वास्तव में सही बात है कि जो कृष्ण के उत्सव होते हैं, उनमें शामिल होने से जो आनंद मिलता है, वो बाहर की पार्टी में नहीं मिल सकता। आजकल घर घर में बहुत पार्टी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी पार्टी तो ये है, सबसे आनंद तो यहां है। इसलिए एक वैष्णव कवि ने भी बताया है कि माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि मतलब जब ऐसी कोई तिथि होता है जहां पर हम माधव या श्री कृष्ण का कोई उत्सव मनाते हैं, तो ये भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है, क्योंकि ऐसे उत्सव में शामिल होने से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से निमाय पंडित पूरी तरह से व्याख्या करने लगे और अपने शिष्यों को बोलने लगे कि इसलिए मैं कहता हूं कि तुम कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लो। वो चरण कमल जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी देवी करती हैं, वो चरण कमल जिनको अपने सिर पे शिवजी रखना चाहते हैं, इन चरण कमलों का आश्रय लो, और यही सारे शास्त्रों का और ज्ञान का सार है। तो फिर से पहले वाले निमाय के मूड में, भाव में आ गए। कहो, कोई इसका खंडन कर सकता है? बताओ, कौन है ऐसा विद्वान सारे ब्रह्मांड में जो इस निष्कर्ष का खंडन कर सकता है? आए मेरे सामने। तो इस प्रकार से फिर वो अपने भाव से बाहर आ गए, और जब आए तो फिर शर्मा गए कि क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं क्या पढ़ाता था, मैंने क्या पुस्तक कौन सी खोली और क्या पढ़ा दिया। तो अपने शिष्यों से पूछा, अरे देखो क्या है कि मेरी वाद की वाद का विकास, जैसे क्या होता है कि मेरा मन कभी कभी अस्थिर हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने क्या पढ़ाई के संबंध में, पाठ के संबंध में कुछ कहा? तो शिष्यों ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि शर्मा गए थे निमाय पंडित, तो थोड़ा कुछ व्याकरण के बारे में दो चार कुछ उन्होंने शब्द बोले, ऐसे थोड़ा समय बिताया व्याकरण में, हालांकि बिल्कुल रुचि नहीं थी, और फिर विषय बदल दिया, कह दिया चलो चलो हम गंगा में जाके स्नान करते हैं। तो गंगा में जाकर फिर निमाय पंडित वहां लीला करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे, जैसे कि पहले के निमाय पंडित किया करते थे। और उस जल क्रीड़ा को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी लालसा रखते हैं, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं। और वो नवद्वीप के निवासियों का अहोभाग्य है कि वो अपने आंखों से इन लीलाओं को देख सके। और गंगा जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, गंगा जी आनंद की वजह से वो लहरें भेजती रहीं, और निमाय पंडित भी गंगा जी के जल में जब क्रीड़ा कर रहे थे तो गंगा जी भी आनंद के सागर में डूबने लगी। इस प्रकार से निमाय पंडित अपने शिष्यों के साथ स्नान करके फिर वापस आ गए। इधर घर में आकर फिर उन्होंने प्रसाद लिया, तुलसी का जल अर्पण करके फिर प्रसाद लिया, फिर विश्राम करने लगे, जैसे अनंत शेष के ऊपर महाविष्णु विश्राम करते हैं। और थोड़ी देर के बाद सची माता उनके सामने आई, इस बार थोड़ा शांत देखा निमाई को, तो बात करने का साहस किया, अरे निमाई आज तुमने कौन सा किताब पढ़ाया और किसके साथ तुमने वाद किया आज? क्योंकि हर रोज पहले के निमाई जो थे कोई न कोई पंडित से विद्वान से वाद करके उनको हरा कर उनके घमंड को चूर चूर करके ही लौटते थे। ये दिनचर्या थी, रोज का टाइम टेबल था निमाय पंडित का, इसलिए जो भी पंडित हुआ करते थे घबराते थे निमाय पंडित के सामने आने के लिए। तो फिर निमाय पंडित कहने लगे कि हमने आज चर्चा की इस विषय के ऊपर कि कृष्ण के अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है। सत्य है तो संसार में कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण का नाम और कृष्ण के भक्त। कृष्ण के भक्तों को कभी साधारण नहीं समझना। कृष्ण का नाम का उच्चारण करने से हमें कृष्ण भक्ति मिल सकती है, कृष्ण नाम से ही सारे जगत का कल्याण हो सकता है, इसलिए यही एकमात्र सत्य है। इसलिए हे सची माता, हे माता आप भी कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार करो। जो शास्त्र कृष्ण भक्ति के निष्कर्ष को सामने नहीं पेश करते वो शास्त्र नहीं है, वो असत्य है। सच्चा शास्त्र तो वो है, वो जो हमें केवल ये सिखलाता है कि आप कृष्ण के शरण में जाके उनकी भक्ति करो। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसमें कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं है, और अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर उस शास्त्र को पढ़ें और सिखाएं, तो आपको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन भक्ति ये ऐसा मार्ग है, कृष्ण नाम ये ऐसी चीज है कि अगर चांडाल इसका उच्चारण करे तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। और अगर कोई विद्वान ब्राह्मण हो जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता है तो वो चांडाल से भी नीच है। इसलिए हे माता आप ये कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार कीजिए। सची माता सब ध्यान से सुन रही थी। और फिर आगे कृष्ण भगवान निमाय पंडित बोलने लगे कि लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां जो संसार में लोग हैं इतने पापी हैं कि कृष्ण भक्ति को ठुकरा रहे हैं, इनको बिल्कुल रुचि नहीं है, इसलिए बारंबार उनको यहां जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, ये त्रिविध तापों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हे माता जो कृष्ण भक्त है वो सदैव इस संसार के मृत्यु और जन्म के तापों से कष्टों से मुक्त रहता है। ये जो संसार के कष्ट हैं मेरे भक्त को कृष्ण भक्त को छू नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अनादर करते हैं उनको बारंबार एक मां के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है। और हे माता बच्चे का गर्भ में जो स्थान है वो क्या है? बहुत ही दर्दनायक है, बड़ी भयानक अवस्था होती है मां के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका। सबसे पहली बात तो एकदम अंधकार की अवस्था में रहता है, और उसका शरीर बिल्कुल बका हुआ रहता है, और वहां पे जो मां के घर में जो भी वो मां खाती है, चाहे वो खट्टी चीज हो, मसालेदार चीज हो, तीखे चीज हो, वो आके उसके शरीर को लगता है, बहुत दर्द होता है उसे। और मां के शरीर में अगर कोई कीड़े हो या कोई भी जंतु हो, वो भी उसके चमड़े को, उसके त्वचा को काटते हैं, और बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। मां इधर उधर उठती बैठती है, बच्चे को तकलीफ होता है। नरक के समान है ये, बल्कि इतना कष्ट होता है उसको कि वो सहन नहीं कर सकता। और अपने भाग्य को सहते हुए उसको वहां 9 महीने बिताने पड़ते हैं। फिर उसका जन्म होता है, फिर से उसे मृत्यु के बाद ऐसे ही 9 महीने गर्भ में बिताने पड़ते हैं। और जो और भी ज्यादा पापी है, वो जो 9 महीने मां के गर्भ में रहता है, उसको भी सहन नहीं कर पाता, उसकी मृत्यु मां के गर्भ में ही हो जाती है। और ऐसे कई पापी लोग हैं जो बारंबार मां के गर्भ में आते हैं और जन्म लेने के पहले मां के गर्भ में ही मर जाते हैं। ये बहुत पापी जीव हैं। और फिर अचानक जब 7 महीने हो जाते हैं मां के गर्भ के भीतर, तो जीव की चेतना विकसित हो जाती है और होश ठिकाने आ जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करता है वो बच्चा कि हे भगवान, मैंने बहुत गलती की, मैंने इतने जन्मों का पाप किया, इसलिए मुझे यहां मां के गर्भ में यह दंड मिल रहा है, इतना कष्ट मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों में आप आश्रय दे दीजिए, मुझे ये माया जाल से मुक्त कर दीजिए। मैंने अनादि काल से आपसे मैं विमुख हो गया हूं, और इसलिए मुझे यहां ये दुर्दशा हो रही है मेरी। अभी मैं माया से बाहर निकलना चाहता हूं, ये कष्ट मेरे लिए असहनीय हो गई है। मैं वायदा करता हूं कि जब मैं मेरे मां के गर्भ से बाहर आऊंगा, तो मैं आपका आश्रय लूंगा, आपके चरणों को कभी भूलूंगा नहीं। कृपया मेरे ऊपर ये वरदान दीजिए कि मैं आपको चरण कमलों को कभी भी भूलू नहीं। इस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है, और फिर ऐसे प्रार्थना करके जीव जब जन्म लेता है तो भगवान को भूल जाता है। अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है, कृष्ण के शरण में आता है, तो फिर वो अपने जीवन को सुधार सकता है और अंत में वो भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए हे माता, सभी को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। सची माता इन बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, और निमाय पंडित जो हैं, वो और अपने कृष्ण कथा में और अपने कृष्ण स्मरण में मग्न रहे। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जब निमाय पंडित सची माता को उपदेश दे रहे थे, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में आता है। देवहूति माता इतनी भाग्यशाली थी कि भगवान उनके पुत्र बनकर आए, और जब देवहूति माता ने निवेदन किया अपने पुत्र से कि मैं तो अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुई हूं, मेरा उद्धार कर, मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए, उस समय कपिल देव ने बहुत एक सुंदर और लंबा उपदेश अपनी मां को सुनाया था। तो उसी का स्मरण करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि अब निमाय पंडित, जो कि वही भगवान है, अब उनकी माता सची देवी को उपदेश कर रहे हैं। इस प्रकार से निमाय पंडित के दिन बीतने लगे। तो निमाय पंडित जहां भी जाते, वहां कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के कीर्तन में रहते। जब अगले दिन फिर से वो पाठशाला में आए, तो उनके शिष्यों ने उनको प्रश्न करने आरंभ किए, जैसे पहले करते थे व्याकरण के ऊपर। उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो वर्णमाला है, जो अक्षर है वर्णमाला, ये क्या सिद्ध करते हैं? तो निमाय पंडित ने जवाब दिया, ये सिद्ध करते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आया विद्यार्थियों को कि वर्णमाला है जो आ ई ई क ख ग घ, इससे ये बात कैसे सिद्ध होती है? तो निमाय ने कहा, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है, बहुत अनुकूल दृष्टि से इस वर्णमाला की ओर देखते हैं। समझ में नहीं आए और जरा विस्तार से बताइए, कुछ सही ढंग से हमें समझाइए। तो फिर निमाई पंडित कहने लगे कि देखो, शास्त्रों की जो शुरुआत है, शास्त्रों का अंत है, शास्त्रों का बीच का भाग है, और केवल शास्त्र नहीं, कुछ भी हो संसार में, चाहे विश्व भर हो, जगत हो, इसकी शुरुआत, मध्य और अंत ये कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण का नाम ही हमें उच्चारण करना चाहिए। ये जो वर्णमाला है, अक्षर है, ये भी कृष्ण के गुणगान के लिए ही है। इसलिए अ भी कृष्ण है, अंत में भी कृष्ण है, बीच में भी कृष्ण है। इसलिए इसके बारे में कृष्ण कृष्ण कहते रहो, बस इतना ही आवश्यक है। तो जो विद्यार्थी है वो कुछ समझ में नहीं पाया, तो फिर निमाई पंडित ने कहा, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आपके बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि शास्त्रों का सार कृष्ण है, लेकिन क्या है कि हमारी बुद्धि कम पड़ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या वर्णन कर रहे हैं। वैसे जीव गोस्वामी जो हैं, जो षड गोस्वामियों में से एक हैं, उन्होंने इसी पद्धति के अनुसार एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम है हरि नाम अमृत नामामृत व्याकरण, मतलब व्याकरण को सिखाने वाला एक ग्रंथ जो केवल कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण शब्द को लेकर जीव गोस्वामी ने व्याकरण सिखाया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाते थे। हर बात को व्याकरण हो, न्याय हो, कुछ भी हो, कृष्ण शब्द से जोड़ देते थे। तो जब ऐसे हुआ तो अभी विद्यार्थी सोच रहे थे कि अभी अभी हमें जाके गंगादास पंडित से कुछ बात कहनी होगी, कि हमें तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कृष्ण कृष्ण बोले ही जा रहे हैं। तो जब निमाई पंडित फिर गंगा में स्नान करके वापस चले गए, तो उस समय ये सारे विद्यार्थी जो हैं, ये गंगादास पंडित के सामने आए और बोलने लगे कि पंडित जी देखिए गुरु महाराज, अभी प्रश्न ये है कि हम निमाई पंडित के शिष्य हैं, लेकिन वो पहले वाले हमारे अध्यापक नहीं रहे। पहले जिस प्रकार से वो टीका करते थे, अलग अलग गलत टीकाओं का खंडन करते थे, सही सिद्धांत को स्थापित करते थे, आज वो निमाई पंडित नहीं है। हम जब पाठ खोलते हैं, पाठ खोलने के बाद वो व्याकरण का कोई पॉइंट लेते हैं और कृष्ण कृष्ण किसे संबंधित ही सब वो टीका करते हैं, हर बात को वो कृष्ण से जोड़ देते हैं और फिर अंत में हमें यही उपदेश देते हैं कि हमें कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और शायद ये बात सही भी है, लेकिन हमारी बुद्धि कम पड़ती है, हम समझ में नहीं, हमें समझ में नहीं आता। अभी पूरे 10 दिन हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि पाठ में क्या चल रहा है, हमारी पढ़ाई तो बोलकर रुक ही गई है, तो व्याकरण में हम तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो गंगादास पंडित ने बड़े ध्यान से सुना इनको, हंसे, कहने लगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं निमाई पंडित को आज अच्छी तरह से समझा देता हूं। तो अगले दिन सुबह जब निमाई पंडित आए गंगादास पंडित के पास, उनको नमस्कार किया और गंगादास पंडित निमाई से कहने लगे कि अरे निमाई सुनो, तुम कितने भाग्यशाली हो, धन्य है तुम्हारा जीवन, क्योंकि तुम्हारे माता पिता इतने विद्वान हैं। तुम्हारे पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, जो बड़े शिक्षित विद्वान ब्राह्मण हैं, और तुम्हारे माता सची देवी, उनका क्या कहना, ऐसे पुण्यवान महिला है, और उनके पिता का नाम नीलांबर चक्रवर्ती, इतने बड़े विद्वान और ब्राह्मण भगवान के भक्त, और तुम भी कोई कम नहीं, तुम भी बड़े विद्वान हो, और जिस निपुणता से, दक्षता से तुम व्याकरण और शास्त्रों का निष्कर्ष पेश करते हो सारे समाज में, और सही सिद्धांतों को स्थापित करते हो, लोग अवाक रह जाते हैं। लेकिन अब देखो निमाई, तुम कृष्ण भक्ति करते हो, ये अच्छी बात है, करते रहना कृष्ण भक्ति, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ साथ करते रहना। अभी क्या ये जरूरी है कि भक्त बनने के लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़नी चाहिए? क्या पढ़ाई छोड़ने से ही कृष्ण भक्ति मिलेगी? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे माता पिता ये कैसे इतने महान कृष्ण भक्त हैं? तुम्हारे पिता ने ये सब व्याकरण इत्यादि सब सीखा साथ साथ कृष्ण भक्ति की, इसलिए आज वो न केवल इन चीजों में पंडित हैं, लेकिन महान कृष्ण भक्त भी हैं। इसलिए तुम साथ साथ ये दोनों चीजें करना, कृष्ण भक्ति करना और साथ साथ पढ़ाना व्याकरण। और वैसे अगर तुम नहीं पढ़ोगे पढ़ाओगे नहीं, अगर कोई अशिक्षित ब्राह्मण हुआ तो भले उसके मन में उसके अंदर विवेक बुद्धि कहां से आएगी। हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से शास्त्रों को पढ़ के हम जाने और बड़े विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हम बने। तो सही ढंग से जैसे तुम पहले करते आए थे वैसे तुम व्याकरण के ऊपर पाठ के ऊपर टीका करना वैसे सिखाना। अभी मनगढ़ंत ढंग से कृष्ण को बीच में लाकर तुम जो टीका करते हो ऐसे जब हम सुनते हैं तो मेरे मन में बहुत दुख होता है कि तुम सही टीका देने के बजाय कोई दूसरा ही टीका दे रहे हो। तो जब ये बातें सुनी निमाई पंडित ने तो उन्होंने नमस्कार किया अपने गुरु के चरणों में और कहा कि आपकी कृपा से आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर मैंने जो भी व्याकरण में या शास्त्रों का जो सिद्धांत मैंने प्रस्तुत किए हैं समाज में उसका खंडन आज तक कोई नहीं कर पाया है। मैं जो भी सिद्धांत स्थापित करता हूं कोई भी पंडित आज नहीं है आज तक जो मेरा सामना कर पाया है। ये केवल आपकी कृपा है तो मैं दोबारा ये कार्य शुरू करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो गंगादास पंडित बड़े खुश हुए, आशीर्वाद दिया चिरंजीव भव, और फिर निमाय पंडित वापस अपने घर में चले गए। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि गंगादास पंडित का कितना सौभाग्य था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनको उपदेश करने का मौका मिला। कृष्ण ही उनके शिष्य के रूप में आए थे और वो शिष्य जो थे निमाय पंडित के उनका कितना सौभाग्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कृष्ण भक्ति के बारे में। तो ये भी कोई साधारण बालक नहीं थे, ये कोई विशेष जीव हैं जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण के पास अनादि काल से है, इसलिए तो उनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उनके डायरेक्ट प्रत्यक्ष उनके शिष्य हुए। कितना सौभाग्य, जैसे अर्जुन का सौभाग्य, स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता समझाया, स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में, उसी प्रकार से निमाय पंडित के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इन शिष्यों को इन ब्राह्मणों को उपदेश दिया कृष्ण की भक्ति के बारे में। तो ये भी कोई साधारण जीव नहीं है। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर गंगादास पंडित की और इन शिष्यों की दोनों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं। तो अगले दिन निमाय पंडित अपने शिष्यों को साथ में लेकर गंगा जी के तट में बैठे और जैसे पहले किया करते थे वैसे घमंड की भावना से टीका करना शुरू कर दिया और कहने लगे आजकल ये जो पंडित हैं इनको संधि भी जोड़ना नहीं आता और अपने आप को भट्टाचार्य कहते हैं। ये कैसे भट्टाचार्य है, कैसे बड़े विद्वान है, कोई आए तो मेरे सामने तब मैं सिखाता हूं कौन विद्वान है कौन नहीं है। और फिर वो क्या करते, किसी एक सिद्धांत को स्थापित करते व्याकरण का और बोलते किसी को कि चलो इसका खंडन करो और कोई खंडन नहीं कर पाता, तो वे खुद निमाय पंडित उस सिद्धांत का खंडन करते और कहते कि जब चलो अब मैंने जिस बात को सिद्ध किया है उसका खंडन करो, कोई नहीं कर पाता। फिर से निमाय पंडित उस दूसरे सिद्धांत का खंडन करते और पहले जो सिद्धांत उन्होंने कहा था जो मूल सिद्धांत उसको पुनः स्थापित करते और कहते इसको सिद्धांत इस सिद्धांत को खंडन करो। तो पुनः ये काम निमाय पंडित ने गंगा के तट पर शुरू किया और जो भी ब्राह्मण वहां आते थे स्नान करने के लिए अपने वो चुप चुप के इधर उधर से चले जाते, जल्दी से आते थे जल्दी से चले जाते थे, क्योंकि निमाय का सामना नहीं करना था उनको, उनके विद्वत्ता का घमंड पूरी तरह से भंग हो गया था। तो इस प्रकार से निमाय पंडित कार्य करने लगे। एक बार ऐसे हुआ कि वो गंगा जी के तट से लौटते हुए एक ब्राह्मण के घर में गए जिनका नाम था रत्नगर्भ आचार्य। रत्नगर्भ आचार्य जगन्नाथ मिश्र के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे और वो बड़े कृष्ण भक्त थे और उनके तीन पुत्र थे जिनका नाम था कृष्णचंद्र, जीव और जदुनाथ। ये तीनों भी महान कृष्ण भक्त थे। जब निमाय पंडित उनके घर में पहुंचे अपने शिष्यों के साथ में तो रत्नगर्भ आचार्य श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे और उनके परिवार के सदस्य साथ में बैठे हुए थे। तो कैसे एक कुटुंब होना चाहिए, ये दृश्य भी हमें दिखाई पड़ता है कि हर घर में कृष्ण कीर्तन हो और श्रीमद् भागवत गीता की कथा चल रही हो तो हर घर यहां गोलोक वृंदावन बन जाएगा, सारी दुनिया जो है वैकुंठ बन जाएगी। और रत्नगर्भ आचार्य दशम स्कंद का ये लीला, ये घटना वर्णन कर रहे थे, जबकि मथुरा के जो ब्राह्मणों के पत्नी हैं वो कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते थे, कैसे वो पैरों को अपने चरणों को एक के ऊपर एक करके खड़े थे, और फिर उनके काले बालों में मोर पंख था, फिर थोड़ा टेढ़ा था, और कैसे वैजयंती माला थी जो घुटनों तक पहुंच रही थी, और उनके जो आभूषण थे, जो कौस्तुभ मणि है इत्यादि, उनकी जो बांसुरी है, वो सब का वर्णन कर रहे थे। तो इस वर्णन को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर बेहोश नीचे गिर पड़े और कहने लगे रत्नगर्भ आचार्य से, और कहो और कहो। रत्नगर्भ आचार्य को और जोश आया और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने लगे इस दशम स्कंद के, और महाप्रभु के शरीर में ऐसे विकार होने लगे, भक्ति के विकार होने लगे, इसकी कोई सीमा नहीं, कभी उठते कभी गिर जाते, और रत्नगर्भ आचार्य बोले जाते। आखिर में गदाधर पंडित ने कहा रत्नगर्भ आचार्य से, अब रोकिए, अब इतना बहुत हो गया अभी। तो फिर वो रुके, रत्नगर्भ आचार्य जो है उनको आलिंगन किया निमाय पंडित ने, और जैसे आलिंगन किया तो मानो उनके शरीर में कृष्ण भक्ति का करंट जैसा लग गया, और वो भी भाव विभोर होके बेहोश गिर पड़े। और ये शिष्य देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हमारे अध्यापक के क्या सब हो रहा है, कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें कभी कल्पना नहीं की थी ये सब कृष्ण भक्ति क्या चीज हो सकती है, ऐसे भी कृष्ण भक्ति होती है। खैर, हमें तो कभी भी ऐसे नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी महाप्रभु दिखला रहे हैं कि कृष्ण भक्ति की चरम सीमा क्या होती है। तो फिर वापस अपने पाठशाला में लौट कर चले आए, और जब वापस आए तो फिर से पाठ आरंभ हुआ। तो विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि उन्होंने कहा कि धातु की परिभाषा क्या है। धातु मतलब जो क्रियापद होते हैं भाषा में, व्याकरण में, उनकी वो उनका स्पष्टीकरण चाहते थे। जैसे संस्कृत व्याकरण में कई ऐसे धातु होते हैं, उदाहरणार्थ शस धातु। शस एक मूल क्रियापद है जिससे कई सारे शब्द आते हैं, जैसे शस से आता है शासन, शिष्य, और कई ऐसे शब्द आते हैं, या विद, ये और एक धातु है। विद धातु से आता है विद्या, वेद, विद्वान, विद्यालय इत्यादि। युज, इस धातु से आता है योग शब्द, युज का मतलब जोड़ना, तो इस शब्द से योग आता है। तो ये सारे जो धातु हैं व्याकरण में, इनकी परिभाषा चाहते थे ये शिष्य। तो उन्होंने पूछा कि धातु इसकी क्या परिभाषा है। तो महाप्रभु ने विचार करके कहा, मैं बहुत सावधानी से समझाऊंगा और तुम सावधानी से सुनना। धातु शब्द का अर्थ है कृष्ण की शक्ति। क्यों? क्योंकि देखो, इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं दुनिया में, उनके शरीर में इतना सौंदर्य, कभी कभी इतने सारे सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए, फूलों का हार पहने हुए, शरीर में चंदन का लेप लगाए हुआ, और इतना ऐश्वर्य उनका कि लोग सोचते हैं कि ये स्वयं लक्ष्मी देवी इनके घर में निवास करती है, और क्योंकि ये नरदेव हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं इस राज्य में, इसलिए जो भी वो शब्द कहते हैं लोग समझते हैं कि ये यमराज के शब्द हैं, क्योंकि यमराज वो व्यक्ति हैं जो धर्मों के नियमों को का पालन करते हैं और सारे विश्व भर में वो दंड देते हैं लोगों को। लेकिन हे मेरे शिष्यों, अगर उस व्यक्ति से प्राण चले जाए, वो धातु चले जाए जो कृष्ण की शक्ति है, जो कृष्ण की वजह से वो जीवित है, अगर वो प्राण चले जाए तो फिर उस शरीर को कोई हाथ लगाना पसंद करेगा? और वही व्यक्ति जो उसका पुत्र था उसी शरीर को वो आग लगाएगा उसके मुंह में और सभी उस शरीर को बाहर निकाल लेंगे घर से। तो वो सौंदर्य, वो सब शक्ति, वो सब कहां गई? इसका मतलब है कि वो सौंदर्य, वो शक्ति उस शरीर की नहीं है, उस व्यक्ति की नहीं है, बल्कि कृष्ण की है। इसलिए धातु मतलब वो मूल शक्ति जिससे कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई प्राण है, कोई आनंद है, कोई शक्ति है, कुछ भी है। इसलिए धातु मतलब मूल तत्व। ऐसे धातु शब्द के कई अर्थ होते हैं संस्कृत में, जैसे तांबा हो या कांस्य हो या सोना हो, उसको भी हम धातु बोलते हैं। या हमारे शरीर में जो कफ वात पित्त है उसको भी धातु बोलते हैं। कभी कभी आत्मा को भी धातु बोलते हैं। कभी भी शरीर का रस जो होता है उसको भी धातु बोलते हैं। तो अलग अलग अर्थ हैं धातु के, लेकिन यहां मूल अर्थ को समझा रहे हैं निमाय पंडित। कहते हैं धातु मतलब कृष्ण की शक्ति जिससे हर चीज को शक्ति मिलती है, प्राण मिलता है। इसलिए तुम कृष्ण का आश्रय लो और कृष्ण का आश्रय लेने से तुम्हें अपने जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से निमाय पंडित धातु की व्याख्या करते गए और फिर पूछने लगे कि क्या तुम समझ गए इसकी व्याख्या को? तो शिष्य दोबारा कहने लगे, हमारे समय आप तो कह रहे हैं इसका खंडन कौन कर सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने, आपने जो शास्त्र का निष्कर्ष बताया है ये बिल्कुल सही है। हम तो आजकल व्याकरण से की दृष्टि से धातु शब्द को समझते थे, लेकिन आज हमने समझ लिया कि धातु शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से निमाय पंडित बड़े खुश हुए और वो कहने लगे कि हाँ देखो, वास्तव में मैं ये व्याकरण सिखाने के लिए अभी असमर्थ हो गया हूं, क्योंकि मैं केवल कृष्ण को ही आंखों के सामने देखता हूं। जब भी मैं आंख खोलता हूं या बंद भी करता हूं तो मुझे केवल वो दृश्य सामने आता है कि एक लड़का है जिसके काले घुंघराले बाल हैं, उसके बालों में मोर पंख है और उसकी जो त्वचा है, उसका जो वर्ण है, रंग है, वो बरसात के बादल के समान है। और जो भी मैं देखता हूं तो इस बालक को देखता हूं और इसके इर्द गिर्द केवल गोलोक वृंदावन को देखता हूं। इसलिए मेरे मुंह से केवल कृष्ण का शब्द आता है। मैं व्याकरण अभी नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करना। आज से मैं शिक्षक का पद मैं त्याग रहा हूं। तो अपने सारे जो पुस्तक है वो कपड़े में बांधे और शिष्यों को दे दिया। निमाय पंडित की आंखों में आंसू थे कि आज से मैं सिखाना बंद कर दूंगा क्योंकि मैं असमर्थ हूं इस काम को करने के लिए। तो सारे शिष्य वो भी सब रोने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, अगर आप हमें नहीं सिखाएंगे तो हम किससे सीखेंगे? आप जैसा अध्यापक हमें कहां मिलेगा? आप जैसे हमें समझाएगा कौन? और आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हमें कहां मिलेगा? नहीं, हम आपके बिना कुछ सीख नहीं सकते हैं, हम भी पढ़ाई बंद कर देंगे। उन्होंने भी अपने अपने किताबें बंद कर दी और वापस रख दिए। तो निमाय पंडित कहने लगे, बहुत अच्छा, देखो देखो अभी कृष्ण भक्ति करो, सब मिलकर अभी नाम संकीर्तन करो कृष्ण भगवान का, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारे शास्त्रों का सार यही है कि तुम कृष्ण का नाम ले लो। तो सभी विद्यार्थी उनसे पूछने लगे कि आप हमें बोल रहे हो कि हमें कृष्ण का नाम का संकीर्तन करना चाहिए, लेकिन हमें तो मालूम नहीं कैसे करना संकीर्तन। तो निमाय पंडित ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम कीर्तन करना। और पहली बार कृष्ण भगवान ने इस विशेष अवतार में हरि नाम का संकीर्तन किया और हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन हुआ। इस क्षण जब नवद्वीप में उन्होंने पहली बार अपने शिष्यों को संकीर्तन में लगाया, उस समय मृदंग करताल कुछ नहीं था उनके साथ, केवल ताली मार के उन्होंने सिखाया उनको कैसे कीर्तन करना चाहिए। तो निमाय पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, आप सब नहीं जानते हो, मैं सिखाता हूं कैसे कीर्तन करना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे पीछे बोलो ताली मारकर, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन तो इस प्रकार से पहली बार नाम संकीर्तन शुरू हो गया और सभी लोग शिष्य उधर झूमने लगे और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिखाया था फिर वो भी कीर्तन करते करते भाव विभोर हो गए, कोई बेहोश हो पड़ा, कोई फिर से कूदने लगा, कोई नाचने लगा, कोई जोर जोर से गर्जना करने लगा और कोई जो शिष्य थे सीधे उन्होंने वैराग्य का जीवन अपना लिया। हमको अभी को भौतिक जीवन चाहिए नहीं, सब ने वैराग्य का जीवन अपनाकर नाम संकीर्तन आंदोलन में सब शामिल हो गए। उधर ये सब आवाज सुनकर सब जगह हवा कीर्तन की आवाज फैलने लगी। सभी लोग देखने लगे, क्या इतनी आवाज आ रही है, क्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ये लोग। और खबर वैष्णव तक पहुंच गई, वैष्णव सब भागते हुए आ गए, अरे कीर्तन शुरू हो गया नवद्वीप में, नवद्वीप में कृष्ण कीर्तन हो गया। हमने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि नवद्वीप जैसे स्थान में जहां इतने पापी लोग हैं कृष्ण कीर्तन होगा, लेकिन निमाय पंडित की वजह से आज पहले दिन यहां कृष्ण कीर्तन हो रहा है। तो सभी वैष्णव भाग के वहां पर आए और फिर वो भी कीर्तन में शामिल होने लगे और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णवों को लेकर हरिनाम संकीर्तन किया और इसके बाद वो हर दिन संकीर्तन किया करते थे। और किस तरह से वो संकीर्तन करते थे, क्या क्या कौन सी लीलाएं हुई, अगर आपको सुनना है तो आपको अगले साल गौर पूर्णिमा के अवसर में जब गौर लीला की कथा होगी उसमें आपको आना पड़ेगा। उधर यहां हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू हुआ और वृंदावन दास ठाकुर शोक करते हैं कि हाय मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं इन लीलाओं को अपने इन आंखों से देख नहीं पाया, मैंने अवश्य कितने सारे पाप किए होंगे कि मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। तो अब निमाय पंडित ने अपना असली स्वरूप सबके सामने प्रकट किया। जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर रूप धारण किया था निमाय पंडित का, चैतन्य महाप्रभु का, वो असली काम उस दिन से आरंभ हो गया। तब सारे दुनिया को पता चला कि वास्तव में निमाय पंडित का असली स्वरूप क्या है। हालांकि कृष्ण है नहीं जानते थे, लेकिन उस संकीर्तन का काम आरंभ हुआ, जिस उद्देश्य से भगवान आए थे वो काम चालू हो गया। तो याद रखिए कि धीरे 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 से निमाय ने अपने असली उद्देश्य को प्रकट कराया। पहले 16 साल तो केवल उन्होंने ऐसे लीलाएं की जिसका किसी को पता नहीं चला कि ये भक्त है। पूरे 16 साल के ऐसे सुंदर लीला करने के बाद उन्होंने पहली बार भक्ति के लक्षण कब प्रकट किए, कल परसों चर्चा की थी जब गया जी में गए थे, क्या घटना हुई थी? नहीं, जब गदाधर विष्णु के चरण कमलों का दर्शन किया और वहां के ब्राह्मण जब इन चरण कमलों का गुणगान करने लगे, उस समय पहली बार निमाय पंडित ने भक्ति के लक्षण प्रकट किए। और फिर पहली बार निमाय पंडित ने विरह की भावना तीव्रता से कब प्रकट की, हा? कल चर्चा कर रहे थे, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद जब दीक्षा मंत्र ग्रहण किया और मंत्र का उच्चारण करते रहे दशाक्षर मंत्र, उस समय विरह की भावना आरंभ हुई। उस समय से फिर वो हा कृष्ण कहा, कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, ये विरह की भावना में वो तड़पते रहे। और फिर हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन कब शुरू हुआ, कृष्ण कीर्तन कब से शुरू किया, अब से आज से पाठशाला में जब उनके सारे शिष्यों ने कहा हम सब पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अब पुस्तक व्याकरण व्याकरण जाए, उसको मारो तीर, हमें अभी कुछ नहीं, हमें केवल आपके संग में कृष्ण भक्ति करना है, तो उस समय से हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इससे हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन हुआ जो आगे चल के एक ऐसा बाढ़ होने वाला है और होने वाला था जिससे सारा विश्व इसमें डूबने वाला है और वो बाढ़ अभी तक बढ़ रहा है और वो बाढ़ को बढ़ाने के लिए कई भूकंप बीच में आए, जैसे कि जो महान आचार्य हुए परंपरा में वो भी बड़े बड़े भूकंप हुए एक के बाद एक, ऐसे भूकंप जिससे और बाढ़ कृष्ण प्रेम का बढ़ गया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और फिर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व भर में ये बाढ़ को फैलाया है, हर जगह जाकर भूकंप उन्होंने किया। और इसी प्रकार से आप सब भी यहां बेलगाम के भूकंप हैं, सब बेलगाम को आप कृष्ण भक्ति में हिला रहे हैं, बेलगाम को आप डुबा रहे हैं कृष्ण भक्ति के आनंद के सागर में। तो फिर अगले साल ये चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना के बाद, इस दिवस के बाद कैसे कैसे नदिया के, नवद्वीप के नगर में वो संकीर्तन करते हुए जाते थे और कैसे उन्होंने लोगों का उद्धार कर दिया। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे।